ओम शांति, ओम शांति। आज 21 जनवरी है। आज ही के दिन बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां अब शांति स्तंभ है। तो हम सभी मुरली के बाद शांति स्तंभ पर जाएंगे और वहां अपने श्रद्धा सुमन ब्रह्मा बाबा को अर्पित करेंगे और फिर क्लास की टोली आप सभी को वहां ही मिलेगी हिस्ट्री हॉल के बाहर। तो धीरे धीरे ही आएंगे और भाई एक तरफ, बहने दूसरी तरफ और शांति स्तंभ पर ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हम फिर टोली लेंगे लाइन में और फिर नाश्ते पर जाएंगे। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा मेरा अमृत वेला ठीक नहीं है, अमृत वेले मेरा योग नहीं लगता है। तो आज बाबा ने बताया है कि अमृत वेले कैसे हम बाबा को याद करते हैं। कई सोचते हैं शायद उस समय हम बिंदु बनकर बिंदु को याद करें। अब बिंदु तो याद आता नहीं, क्योंकि सवेरे सवेरे उठे। तो बाबा कहते हैं उस समय अपने से बातें करो, अपने से बातें करो। क्या क्या बातें करो वो बाबा ने बताया है। फिर विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा और फिर सारा दिन वो खुशी रहेगी। ब्रह्मा बाबा यही करते थे, सवेरे सवेरे उठ करके कैसे विचार सागर मंथन करते थे, दारी जान की जी बताते ना। तो बाबा सवेरे 2 बजे उठ गए, उठ जाते थे। तो एक दिन दादी जी उनके कमरे में गई और बाबा से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे थे सुबह सुबह 2 बजे? तो बाबा ने कहा, मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहा हूँ। हलवा माना विचार सागर मंथन कर रहे थे, क्योंकि मुरली चलानी है। अब शिव बाबा को तो विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं है, पर ब्रह्मा बाबा को तो करनी है। तो बाबा ने ये जवाब दिया। तो बाबा ने हम बच्चों को भी अपना अनुभव सुनाया है कि मैं भी कैसे करता हूँ, और फिर अपना लौकिक अनुभव भी आज बाबा ने बहुत सुंदर सुनाया। आप लोगों को मालूम होगा ना, बाबा के अंदर भी सन्यासी के संस्कार थे। बाबा को शादी करने की दिल नहीं थी, सन्यासी बनना था। लेकिन एक दिन उन्होंने एक फिल्म देखी, उस समय फिल्म आई थी, नाम भी मुझे याद है, सौभाग्य सुंदरी। आज तो मुरली में नहीं है नाम भी, लेकिन सौभाग्य सुंदरी मनोहर दादी बताते थे। तो वो फिल्म जब देखी सौभाग्य सुंदरी, तो बाबा को ख्याल आया कि मैं भी शादी करूं, और फिर बाबा ने शादी की। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते ना, सिनेमा क्या है, पाप की माँ, तो पाप की तरफ ले जाती है। तो आज बाबा ने ये बात भी हंसी हंसी में कही है। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 21 जनवरी 2025 है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रू रिहान करो। अपने से भी बातें करो, बाबा से भी रू रिहान करो मीठी मीठी, और बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। तो खुशी इतनी आएगी, सारा दिन उस खुशी में रहेंगे। तो सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रू रिहान करो, बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगाड़ते रहो, जुगाली करते रहो, मनन चिंतन करते रहो उन शिक्षाओं का। प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी है। कई बार अमृत वेला अच्छा नहीं होता है तो सारा दिन खुशी भी नहीं रहती है, पर अमृत वेला अच्छा है तो सारा दिन खुशी रहती है। तो सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, रिवाइज करते हैं ना, एग्जाम कभी भी आ सकता है, सरप्राइज टेस्ट भी आती है, तो रोज सवेरे सवेरे उठ करके पढ़ाई करते हैं, दिमाग फ्रेश रहता है उस समय। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, मतलब रिवाइज करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो, ज्ञान का सिमरण कर, जैसे हाँ बाबा की मुरली या बाबा की दी बताई हुई शिक्षाएं उन पर मनन करो। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दे भगवान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना, तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। राह दिखाओ, अभी ये हम नहीं गाएंगे क्योंकि बाप हमको, भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वो पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग, इसलिए ऐसे गीत गाते हैं, आज अंधेरे में है हम इंसान। हम तो नहीं गाएंगे ना ऐसे, क्योंकि बाबा ने हमें रोशनी दी है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं, कब तीर्थों पर कब कहां, दान पुण्य करते मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। अंधेरे में है, अनेक गुरु भी कर रहे हैं, भटकते रहते हैं, तो लेकिन बाबा कहते हैं ये थोड़ी समझते कि हम अंधेरे में हैं। हाँ, सोचना क्या चीज है, कुछ भी समझते नहीं, समझते बस ऐसे ही रहना है, ये हम अंधेरे में है और सोजरा, सोजरे में हमें जाना है। बाबा कहते सोजरा भी क्या, ये भी समझते थोड़ी है, क्योंकि अंधेरे में है। अभी तुम तो अंधेरे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। हम वृक्ष में पहले पहले आते हैं, तना में पहले पहले के हम पत्ते हैं, तो तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में सीढ़ी, द्वापर से सीढ़ी उतरते हैं तो उसमें क्या आता है, इस्लामी बोधि क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं, सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना ये वंडरफुल नाटक है, करते हैं सिमरण ऐसे जैसे बाबा कह रहे हैं, हाँ नाटक ड्रामा देखो कितना वंडरफुल है, ये भी सिमरण करो। कितना ये वंडरफुल नाटक है, इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन, फिल्म रील कितने घंटों का है, कहेंगे 5000 वर्ष का एक फिल्म रील है जो चलता रहता है। ये फिल्म का रील, ड्रामा का इसका ड्यूरेशन 5000 वर्ष है। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की इतनी, आदि आदि, ये मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, शिव बाबा में भी ये सारा ज्ञान है, दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं, तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है, ऐसे नहीं ऐसे खाली ज्ञान का मनन चिंतन करना है, बाबा को भी याद करना, क्योंकि किसने दिया ये ज्ञान, तो पहले तो बाबा याद आएगा। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और फिर ज्ञान का सिमरण करना है खुशी में, खुशी में, नींद की अवस्था में नहीं, हाँ खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। तो बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, मनुष्य तो कह देते हैं लाखों वर्ष है। कितना वंडरफुल ये नाटक है। तो बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए, रिवाइज भी करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, अगर ये पेपर आ जाए, पर ये क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, तो मैं क्या लिखूंगा, तो वो रिहर्सल करते हैं, रिवाइज करते हैं सारा अपनी पढ़ाई। तो स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें जीतते हैं फिर हारते हैं, अब चक्र पूरा होता है, हाँ जीतते हैं फिर हारते हैं, फिर रील शुरू होता है, तो हम जीते हुए होते हैं और फिर हारते हैं, तो ये खेल है, तो इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है कि मुझ बाप को याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं, नाटक कभी लाखों वर्षों का थोड़ी होता है, लाखों वर्ष का कैसे हो सकता है, अभी लाखों वर्ष का हो तो नाटक सुनाएगा कौन, हो थोड़ी कोई लाखों वर्ष जिएगा जो सुनाएगा। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई को याद भी न रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है, कितना अच्छा है, बाबा को ये खेल बहुत पसंद है। तो बाबा को पसंद है तो बच्चों को भी पसंद आना चाहिए ना। कई बच्चे ड्रामा को पसंद नहीं करते, हाँ फिर आएगा कल्प के बाद, यही दुख हमको जो इस समय मिला फिर होगा, हाँ ऐसा ड्रामा हमको पसंद नहीं है, लेकिन पसंद आना चाहिए। क्यों पसंद आना चाहिए, क्योंकि बाबा को पसंद है। अब बाबा को जो पसंद है हमको भी पसंद होना चाहिए ना। तो कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए अब मुझे ड्रामा पसंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। तो सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए, हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी, विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी, नहीं तो सारा दिन और बातों में लगे रहते हैं। तो अपने साथ सवेरे सवेरे उठ ऐसी बातें करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई जानते नहीं है, एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। एक्टर को तो सारा जो भी कहानी है ड्रामा की उसको तो मालूम होनी चाहिए ना, पर कैसे एक्टर हैं हम जो हमको आदि मध्य अंत का पता ही नहीं था। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं, आप समान भी तो क्या, अब उससे ऊंचा है क्या, आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। होता ना छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चा तो वो छोटा है, तो बाप क्या करता है अपने कंधे पर बिठाता है, कभी कभी मैं सिर पर भी बिठाता है, और कहेगा देखो बेटा तो मेरे से भी लंबे हो गए, हाँ तो मेरे से भी लंबे हो गए, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, वाह मैं तो अपने डैडी से भी लंबा हो गया, क्योंकि ऊपर बैठा है ना। तो ये तो वाह बच्चे के प्रति प्यार है बाबा का, तो बाबा कहते हैं तो बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं, आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, क्या अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, कितना प्यार से अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, सबको तुमको ही देता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ, तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। माँ होती है ना बच्चे को नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके फिर कहती जाओ स्कूल जाओ पढ़ो, तो बाबा हमारा बाप भी है टीचर भी है, तो बाबा हमको माँ भी है ना, ब्रह्मा माँ है, तो हमको बहुत सुंदर गुलगुल बनाकर फिर के फिर बाबा पढ़ाते हैं टीचर बन करके, तो गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। कितना बड़ा काम करते हैं बाबा बच्चों के लिए। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वान परस में जाकर भजन आदि करते हैं। 60 वर्ष के हुए, पहले तो ऐसा ही था, 60 वर्ष के हुए फिर सारा धंधा बच्चों को दे देते थे और बच्चे सारा चलाते थे और खुद पिता वान परस ले लेते थे। तो वान परस में जाकर भजन आदि करते हैं, परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं, क्योंकि अभी छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, तो वान परस तो अभी, पहले तो बच्चों को कहते तुम सब वान परस में हो, ऐसे नहीं, वान परस में जाना होगा सब। इस समय हमारी चारों अवस्थाएं हैं, कौन सी चारों अवस्थाएं है, युवा अवस्था भी है, स्टूडेंट अवस्था भी है, फिर उसके बाद परिवार तो है ही है, और अब और ये बाबा का इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है तो जिम्मेदारियां भी है, तो पढ़ाई भी करते हैं, जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, फिर वान परस्ती भी है तो सन्यासी भी है, तो ये चार आश्रम बताते हैं 100 साल में 25 25 25। तो ये 25 25 अभी तो बाबा कहते सबकी वान परस्त अवस्था है, लेकिन चारों अवस्था एक साथ ही है, सन्यास भी है हमारा बेहद का। तो बाबा कहते हैं तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ, मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वान परस में जाकर भजन आदि करते हैं, परंतु यहाँ क्या है, यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वान परस अवस्था है, वैसे भी लौकिक में भी आयु अनुसार वान परस अवस्था है, तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए। ऐसे बहुत है भाई बहन, यहाँ वो कहते हैं बस हमारे बच्चे सब संभाल रहे हैं, हम तो बस बाबा की सेवा ही करते हैं, माताएं भी कहती है बच्चे बड़े हो गए हैं सब अपने पांव पर है, मैंने तो बहुत पालना की सब बहुत कुछ किया, अब सब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इसीलिए अभी हम बाबा की सेवा में लगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सबकी वान परस अवस्था है, बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए, तो सबकी वान परस अवस्था है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सके, ये बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मजा भी सम्मुख में है, मधुबन में आते हैं बाबा के सामने बोली सुनते हैं तो मजा तो उसमें है सम्मुख में, वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं सेंटरों पर, यहाँ बाप सम्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना, गीत भी अभी सुना ना मधुबन की महिमा का, तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो, भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं है, भक्ति भले करते हैं पर शिव बाबा का वर्षा थोड़ी मिलता है, भले सवेरे सवेरे उठते हैं परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं है, वर्षा तो मिलता है रचयिता बाप से, कभी रचना से वर्षा मिल न सके, इसीलिए कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, भक्त लोग यही कहते हैं वेदों में तो यही है नेति नेति, हम नहीं जानते। अगर वो जानते होते, ऋषि मुनि जानते होते, तो फिर बाबा कहते वो परंपरा चला आता। बच्चों को ये भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे। कौन सा धर्म था हमारा श्रेष्ठ धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि में लगा देती है, माया लगाती है, गॉड नहीं लगाता है। गॉड तो आके खोलता है गोदरेज का ताला, लेकिन माया गोदरेज का ताला लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं तो भगवान आकर के ताला खोलता है। तो इसलिए भगवान की महिमा में क्या कहते हैं, भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो। हम सबको, हम सबकी बुद्धि का ताला खोलने वाले बुद्धिवानों की बुद्धि हो। इनकी बुद्धि का ताला खोलो। माँ बाप भी भगवान को कहते हे भगवान मेरे बच्चे की बुद्धि का ताला खोलो, समझता ही नहीं है। तो भगवान आकर के सचमुच सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। इसीलिए गोदरेज है, बाबा इसलिए गोदरेज शब्द कहते हैं, क्योंकि गॉड ही आकर के ये ताला खोलते हैं। और गोदरेज के ताले बड़े मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उनकी जो चाबी है और वो उनकी होती है, और कोई चाबी उसमें लग नहीं सकती है। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप ही आकर के बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ है माया ने लगा, वो आके खोलता हूं। तो माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसीलिए भगवान को कहते आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इनके द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान समझाता हूँ? ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कोई भी मनुष्य दे न सके। तो बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है, क्योंकि सत्संगों में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, कनरस तो बहुत होता है लेकिन लक्ष्य तो कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ तो स्कूल में जाते तो लक्ष्य होता है मुझे ये बनना है। तो सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। वो पढ़ाई पढ़ के डिग्री लेते हैं, फिर अच्छी नौकरी मिलती है तो कमाई हुए, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं, दान पुण्य करो। हाँ, क्या क्या कहेंगे, दान पुण्य करो, ये करो, भेटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पड़ भी घिस जाती है। हाँ, टिप्पड़ भी घुस जाती है ना, ये टिप्पड़ भी बाल भी चले जाते हैं, टिप्पड़ भी घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर कौन सी दशा बैठी है बाबा का बनने के बाद। बाबा कहते हैं तुम बच्चों, तुम्हारी आत्मा पर अभी बृहस्पति की दशा है। जिस पर बृहस्पति की दशा होती है ना, वो तो खूब माला माल बन जाता। बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ये सोचकर फिर नशा चढ़ा। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रही है, ग्रैंडफादर इस फादर द्वारा वर्षा दे रहे हैं। और खुद कहते हैं, वो ग्रैंडफादर खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर ये ज्ञान दिया, ये मुरली वही तो है। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है या गंगा का पानी कौन पवित्र बनाता है? ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है या गंगा का पानी पवित्र बनाता है? अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वो सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, ये है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच बाप समझाते हैं, भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, भगवान वाच है, भगवान समझाते हैं, पर श्री कृष्ण नहीं, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका गीता में नाम लगा दिया है। अच्छा, बाबा प्रश्न करते हैं कि कृष्ण का नाम ही क्यों लगाया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते? नारायण का भी लगा सकते, वो श्री कृष्ण श्री नारायण भी बनता है ना, तो श्री नारायण का नाम नहीं लगाते, बस श्री कृष्ण का नाम लगाते। अब ये भी पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही सत्य नारायण बनते हैं, श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ, अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। समझते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सदगति देते हैं, तो ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है, वो एक ही है, ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वो कहते हैं, वो बड़ी बात कहते हैं, मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते, मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है ना। लौकिक स्कूलों में भी अगर समझो एक क्लास का जो टीचर है उसके स्टूडेंट सारे फेल हो जाए, तो स्टूडेंट्स की केवल इज्जत नहीं गई, टीचर की भी इज्जत गई कि क्या तुमने ऐसा पढ़ाया जो किसी कोई भी तुम्हारे स्कूल में पास नहीं हुआ ना, तो इज्जत जाती है टीचर की भी। तो बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। तो बाप कहते हैं, ऋषि बाबा की भी इज्जत जाएगी ना, कोई अगर व्यवहार ठीक नहीं करता है तो लोग कहेंगे ना, भगवान तुमको पढ़ाता है, भगवान ये पढ़ाता है, तुम ये करते हो, तो शिव बाबा की भी इज्जत गई। तो बाबा कहते हैं, तुम मेरी इज्जत नहीं गवाना। हाँ, देखो बाबा को कितना ख्याल चलता है, मेरी इज्जत नहीं गवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वो फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, गुरु का निंदक ठौड़ न पाए। तो बाबा कहते हैं, वो गुरु लोग तो अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसे गुरु के बारे में कुछ कहा जो ठीक नहीं है तो गुरु कहीं मुझे श्राप न दे दे, ये डर लगता है। परंतु यहाँ थोड़ी डरते हैं, समझते कि ये तो ऐसे ही है, ये लोग ये ब्रह्मा कुमारी जो ग्लानी करते हैं। वो फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए, गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है, तुमने घर बार कैसे छोड़ा? अब ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ने तो बहुत गुरु किए ना। अब कई गुरुओं से प्रश्न करते थे बाबा, क्योंकि सत्य को जानने की इच्छा थी, तो प्रश्न खूब करते थे बाबा से, अब बना गुरु से बाबा। तो अभी गुरु को तो इतना जवाब भी नहीं आता होगा, क्योंकि कितना उसने सुना होगा या पढ़ा होगा। तो कई बार गुरु नहीं भी जवाब देते थे तो बाबा एक और प्रश्न पूछता था गुरुओं से, जो कोई हिम्मत नहीं रखेगा पूछने से। वो क्या पूछते थे बाबा? सन्यासियों से पूछा जाता है, तुमने घर बार कैसे छोड़ा? घर बार क्यों छोड़ा तुमने? घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं, ये व्यक्त बातें मत पूछो। गुरु कह देता है, ये व्यक्त बातें हैं, मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? हाँ बाबा उनको कहते थे, क्यों नहीं बताते हो? तो हमको क्या पता तुम कौन हो? पता नहीं सन्यासी बनने से पहले कहीं कोई ठग न हो कोई। हाँ ऐसे बहुत है, वो बता रहे कुंभ मेले में एक कोई कहते कहीं आतंकवादी ना आ जाए, पता नहीं क्या क्या आ जाए, कुछ कर न ले। तो इतनी पुलिस का प्यारा है क्योंकि बहुत संभालते हम। तो एक मुस्लिम महिला भी आ गई, अभी महिला थी या पुरुष था पता नहीं, तो उन सबसे इंक्वायरी की कि तुम कौन हो, क्योंकि बुर्का पहनी हुई थी, तो इसलिए उनको कहा, अब क्योंकि पता ही नहीं चलता ना कितने करोड़ आ जाते, एक एक करोड़ रोज के आते हैं, कुंभ मेले में। तो बाबा कहते हैं, तो सन्यासियों से बाबा को बाबा उनसे पूछते थे, हमको क्या पता तुम कौन हो, श्रूर बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। वो कहेंगे तुम कौन हो, अब वो कहे क्यों पूछ रहे हो, हाँ तो कहेंगे कि क्यों नहीं पूछे, क्या पता तुम पहले क्या थे, अभी तो गिर गए वस्त्र पहन के बैठ गए, कहीं तो पकड़े भी जाते ना कैसे कैसे है। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है, हाँ भले ज्ञान काल है तो भी इससे नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था, उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है, हाँ वो उनको अपने उनका गुरु बहुत अच्छा था राम तीर्थ, तो वो शिष्य था, उसने किताबें भी लिखी होगी, उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था, साकार में बाबा ने शास्त्र ही पढ़े, ऐसे ऐसे किताबें ही पढ़ी, छोटेपन में वैराग्य आता था। अब बाबा अपनी कहानी सुनाते, छोटेपन में वैराग्य आता था, फिर एक बार बायोस्कोप देखा, फिल्म देखी, पिक्चर देखी, बस वृत्ति खराब हो गई, खराब हो गई, साधुपना बदल गया, फिर आया नहीं मैं तो शादी करूंगा, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वो सब गुरु आदि है भक्ति मार के, कितनी सच्चाई बताते हैं, पर वो गुरु लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या होगा इस गुरु बनने से पहले। तो बाबा देखो अपनी सच्चाई बता रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप अब समझाते हैं वो सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के, सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीरा बाई का भजन है ना, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं, वास्तव में गाली ये ब्रह्मा खाते हैं, श्री कृष्ण गाली नहीं खाते, ये ब्रह्मा गाली खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है, क्योंकि बाबा तो गांव में रहते थे, जन्म तो बाबा का हैदराबाद सिंध के गांव में हुआ था, ऐसे नहीं हैदराबाद सिंध तो शहर था लेकिन गांव में हुआ था, तो गांव में तो कैसे बच्चे होते हैं ना, कपड़े भी नहीं, ऐसे ही बस घूमते रहते हैं, बस एक लंगोटी पहन कर कैसे होते हैं, तो बाबा भी तो गांव का छोरा था। तो ये श्री कृष्ण की बात नहीं है जो उसको दिखाते, गांव का छोरा गाय चढ़ाने वाला, हाँ बाबा कहते श्री कृष्ण क्यों ऐसे गाय चढ़ाएंगा, वो तो राजकुमार था। तो बाबा कहते हैं वास्तव में गाली तो ये ब्रह्मा खाते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है, असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। तो तीन आत्मकथाएं मिक्स हो गई है, एक ब्रह्मा बाबा की, दूसरा शिव बाबा की, तीसरा श्री कृष्ण की, तीनों को मिला दिया क्योंकि संगम है ना। तो बाबा कहते हैं असल में तो ये श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, बाबा को पता भी नहीं था कि ऐसे शिव बाबा मेरे में प्रवेश करेंगे, तो रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, शिव बाबा ने उनको अपना बना लिया, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, शिव बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई पता है ना, कितनी गालियां खाई ब्रह्मा बाबा ने, अमेरिका तक आवाज चला गया, अमेरिका तक आवाज चला गया। मेरे पास वो कटिंग थी, मुझे किसने दिखाई, टाइम मैगजीन में भी इस संस्था के बारे में आया कि तब तो भारत ही था, हैदराबाद सिंध तो भारत ही था, तो उसमें क्या आया, टाइम मैगजीन अमेरिका की बहुत बड़ी मैगजीन है, इंटरनेशनल मैगजीन है, सारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी बातें ना वो उस मैगजीन में आती है, तो उसमें आया था कि भारत में हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है, वो अपने आप को श्री कृष्ण कहता है और उसके पास 300 रानियां हैं, और वो कहता है कि मुझे तो 16,108 रानियां चाहिए। अब बताओ वो टाइम मैगजीन में आ गया ऐसी बात। तो देखो बाबा कहते हैं हाँ अमेरिका तक आवाज चला गया, वंडरफुल ड्रामा है, अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है, कैसा ये वंडरफुल ड्रामा है, तो ड्रामा को देख खुशी होती है। अब वो बाप समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, ये 84 का चक्र है, ये सारा स्मृति में रखना है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, विश्व का मालिक बनने पर कोई तकलीफ तो बाबा देते नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते कि आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। अब देखना चाहिए कुंभ मेले में कैसे हठ योग करते हैं ना, तो हठ योग ऐसे सिखलाते हैं बात मत पूछो, कोई कोई का ब्रेन भी खराब हो जाता है वो हठ योग में। बाप कितना सहज कमाई कराते हैं, ये है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई, तुम्हारी हथेली पर बहिष्ट है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, हथेली पर स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात हथेली पर लाया हूँ। तो बाप ही कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा मुख से तो इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, देखिए ना भक्त लोग कैसे गुप्त माला फेरते हैं, एक गौ का मुख होता है तो उसमें ऐसे हाथ डालते हैं और फिर वो माला उसके अंदर होती है गौ मुख में, और फिर एक 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 वो जपते रहते हैं, राम 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 कहते रहते हैं। तो भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, माला दिखाई नहीं देती क्योंकि गौ का मुख होता है तो वो जैसे वो माला उस मुख में होती है, तो गुप्त माला फेरते हैं उसको गौ मुख कहते हैं, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम 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 हाँ कहते हैं, जैसे कि बाजा बजता है माना एक म्यूजिक हो जाता है राम 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 राम। हमने तो बहुत सुना हुआ, हम गए थे बताया मैंने एक बार, हम गए थे वहाँ कुरुक्षेत्र, वहाँ शिविर रखी थी और कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है सूर्य की वो उस पर, तो इसीलिए मेला था और शिविर चल रही है। अब शिविर करा रहे, माइक ऑन है, स्पीकर ऑन है, आवाज है अंदर, और बाहर से इतना जोर से आवाज आ रही है, राधे 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 राधे, एकदम जैसे म्यूजिक बज रहा है इतना नॉन स्टॉप, क्योंकि वो एक पूरा करते दूसरा बैठा है, वो पूरा करते तो फिर दूसरा चालू कर देता है, कहीं बीच में रुकना भी नहीं चाहिए, श्वास लेने के लिए भी समय नहीं, बस साथ साथ, तो बहुत कुछ था। तो इसलिए बाबा कहते जैसे बाजा बजता है, तो बाबा कहे जैसे कि बाजा बजता है, वास्तव में गुप्त तो ये है। अब गुप्त कौन सा है, माला फेरते हैं गौ मुख में, तो गुप्त तो बाबा कहते ये है, बाप को याद करना ये गुप्त है। अजपा जाप इसको कहा जाता है, और वो अजपा जाप किसको समझते, मुख से नहीं बोलते लेकिन यहाँ कंठ इनका चलता रहता है तो ये पता चलता है ये अंदर ही अंदर मंत्र जाप कर रहा है। अजपा जाप इसको कहा जाता है, खुशी रहती है, कितना वंडरफुल ड्रामा है, ये बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में है, बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है, वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ माना सब कुछ हा? छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना, शिव बाबा की, सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया, सब कुछ माना सब कुछ हा? कोई बड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी छोड़ देवे या बैंक बैलेंस को छोड़ देवे, नहीं, सब कुछ माताओं को अर्पण कर दिया। तो बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं है, लौकिक बेटे भी थोड़ा विरोध किया, बड़ा बेटा था उसने थोड़ा विरोध किया क्योंकि उसने समझा था बाप की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, लेकिन बाबा ने नहीं दिया। तो बाबा ने कहा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। क्यों? हाँ ये तो सब भगवान का हो गया, ये मेरा भी नहीं है, मेरा तो है नहीं जो मैं तुमको दूं। तो एक पैसा भी किसको देना नहीं है, मस्तो मुहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है, नहीं तो महारानी बननी थी, राजकुमारी तो थी, राणा उनका पति भी वो राजा बना, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। ये बच्चियां भी कहती है हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। बाप कहेगा अरे ये वो जो लड़का है ना वो बहुत धनवान है, तुमको बहुत सुखी रखेगा। हमने वो कहते हैं, कन्या कहती नहीं हमें तो नहीं चाहिए ये सब, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए, बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की तो दरकार ही नहीं है। शादी के लिए हाँ शादी के दिन माना एक दिन पहले वनवा में बिठाते हैं, वो जो वधू बनने वाली है उसको वनवा में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, हल्दी लगाती है, तेल लगाती है, तो समय श्रृंगारी थोड़ी होती है। शादी के एक दिन पहले पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। ये बाप कहते हैं मैं तुमको, बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह न सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी चार भुजा दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। शंकर के साथ तो पार्वती दिखाते हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाते हैं। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, सरस्वती ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये तो बाप का बन गया, बाबा ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का बन गया, खुद ही वन ही बन गया, तो फिर उनकी स्त्री कहाँ से आई। तो ये तो बाप का बन गया, कैसी वंडरफुल बातें हैं। मात पिता तो ये है ना, ये ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा माँ भी है, मात पिता तो ये है ना, ये प्रजा पिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। ब्रह्मा मुख से बच्चे पैदा करते हैं तो ये माँ भी ठहरी। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि ये हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। अब ये विचार सागर मंथन करो, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं होती है, घृणा नहीं आती है कि ऐसा कैसा ड्रामा बन गया, घृणा नहीं आती है। हम ये समझते हैं कि हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल, पावन बनने का बीड़ा कैसे उठाना है, युगल है तो ये सोच, ये अंदर में गए, हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं, हाँ फेल हो जाते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि तो है नहीं, ये तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना फर्क है, कहाँ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और सुनाता कौन है सारे शास्त्रों वेदों का सार, शिव बाबा सुनाते हैं, कितना फर्क है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका स्मरण कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। वरदान, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की श्वास देने के निमित्त हो। सुख शांति की श्वास देने के निमित्त हो। स्लोगन, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दृष्टिकस्त होते हो वो नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। हाँ, जादू मंत्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब धीरे धीरे उठेंगे, वहीं योग करेंगे, यहाँ नहीं वहीं जाएंगे। 8 बज रहे हैं। शांति स्तंभ पर सभी जाएंगे और टोली क्लास की आपको वहीं मिलेगी। बिल्कुल धीरे से, शांति से, आवाज बिना आप जाएंगे शांति स्तंभ के पास। एनी डबल फॉरेनर्स हियर? डबल फॉरेनर्स, आई विल जस्ट रीड आउट टुडेज मुरली। सो दिस मॉर्निंग एट 9:00 द बसेस लीव फॉर शांति वन।